डॉक्टर डेव मैथ्यूसन रहस्योद्घाटन व्याख्यान 20 रहस्योद्घाटन 14 संतों का उद्धार और दुष्टों पर न्याय 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह प्रकाशित वाक्य 14 संतों का उद्धार और दुष्टों पर न्याय पर सत्र 20 है। अध्याय 12 और 13 में हमने शैतान और जानवरों के हाथों चर्च के संघर्ष की वास्तविक प्रकृति का खुलासा या वर्णन या अनावरण देखा, जो पूरी दुनिया को उनकी पूजा करने के लिए धोखा देते हैं और फिर चर्च को दृढ़ रहने और सहन करने का आह्वान करते हैं। इसके बीच में समझौता करने से इनकार कर दिया। अब अध्याय 14 और 15 में हम छवियों की एक श्रृंखला के पास आते हैं जो संतों की जीत और उन संतों के पुरस्कार का वर्णन करती है जो वफादार थे और जो अध्याय 12 और 13 के दौरान दृढ़ रहे, लेकिन फिर जानवर पर आने वाले फैसले का भी वर्णन करते हैं और अविश्वासी दुनिया और जानवर और उसके अनुयायी जिन्होंने जानवर का अनुसरण किया और उसके प्रति निष्ठा रखी और अब हम उनका न्याय पाते हैं। इसलिए हम अध्याय 14 और 15 में इनाम पाते हैं जो थोड़ा असंबद्ध प्रतीत होता है। हम इस पूरे खंड में संतों का पुरस्कार और दुष्टों और अविश्वासियों की सजा को बारी बारी से पाते हैं। यह खंड एक बार फिर अंतिम निर्णय के अर्थ और मोक्ष के अर्थ की पड़ताल करता है, क्योंकि लेखक निर्णय और मोक्ष के बीच वैकल्पिक दृष्टिकोण देगा। यह खंड अध्याय 14 अध्याय 15 के पहले 4 छंदों के माध्यम से फिर खंडों की एक श्रृंखला में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें जॉन ने यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि मैंने देखा या मैंने देखा। वह छोटा सा वाक्यांश जो मैंने देखा या मैंने आपके अंग्रेजी अनुवादों में देखा अक्सर विशिष्ट इकाइयों या अनुभागों को चिह्नित करने का कार्य करता है, और यहाँ मैंने देखा या मैंने अध्याय 14 और 15 में कम से कम 4 अलग अलग अनुभागों को चिह्नित किया। सबसे पहले पहला खंड अध्याय 14 और श्लोक 1-5 में पाया जाता है, जहाँ हम मेमने और 144,000 लोगों को सिरोन पर्वत पर खड़े होकर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए देखते हैं। दूसरा खंड अध्याय 14 और छंद 6-13 में पाया जाता है, और यह 3 स्वर्गदूतों की छवि है जो सुसमाचार और अंत समय मोक्ष या अंत समय न्याय की घोषणा करते हैं। तीसरा यह है कि हम अध्याय 14 और श्लोक 14-20 में मनुष्य के पुत्र के पृथ्वी पर फसल काटने के लिए आने का एक दर्शन पाते हैं। हमें वास्तव में फसल की 2 छवियां मिलती हैं, एक अनाज की फसल है और दूसरी अंगूर की फसल है। फिर अंत में अध्याय 15 और श्लोक 1-4 में हम संतों को समुद्र के किनारे विजयी खड़े हुए और विजय का गीत गाते हुए पाते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो वे 4 मुख्य खंड हैं जिनका अनुसरण किया जाएगा, लेकिन मुझे अध्याय 14 पढ़ने दीजिए और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि ये 3 खंड मैंने जो देखा या फिर देखा उससे विभाजित हैं। अध्याय 14 फिर मैंने देखा और मेरे सामने सिय्योन पर्वत पर मेमना खड़ा था और उसके साथ 144,000 लोग थे, जिनके माथे पर अध्याय 13 के ठीक विपरीत उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। और मैंने स्वर्ग से ऐसी आवाज सुनी बहते पानी की गर्जना और गड़गड़ाहट की तेज आवाज की तरह, जो आवाज मैंने सुनी वह वीणावादकों की तरह थी जो अपनी वीणा बजा रहे थे, और उन्होंने सिंहासन के सामने और 4 जीवित प्राणियों और बुजुर्गों के सामने एक नया गीत गाया, और कोई भी इस गीत को नहीं सीख सका उन 144,000 को छोड़कर जिन्हें पृथ्वी से छुड़ाया गया था। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किया, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध रखते थे, और जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। उन्हें मनुष्यों के बीच से खरीदा गया और परमेश्वर और मेने को पहले फल के रूप में चढ़ाया गया। उनके मुंह से कोई झूठ नहीं निकला, वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को हवा में उड़ते हुए देखा, और उसके पास पृथ्वी पर रहने वाले हर राष्ट्र, जनजाति, भाषा और लोगों को प्रचार करने के लिए शाश्वत सुसमाचार था। उसने ऊंचे स्वर से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए, उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। दूसरा स्वर्गदूत भी उनके पीछे हो लिया और कहने लगा, गिर गया, गिर गया बड़ा बाबुल, जिसने सब जातियों को अपने व्यभिचार की मादक मदिरा पिलाई। और फिर तीसरा स्वर्गदूत भी उनके पीछे हो लिया और ऊंचे स्वर से कहा, यदि कोई उस पशु की पूजा करे छवि और उनके माथे पर या उनके हाथ पर उसका निशान प्राप्त होता है, वह भी भगवान के क्रोध की शराब पिएगा, जिसे उसके क्रोध के प्याले में पूरी ताकत से डाला गया है। उसे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में जलती हुई गंधक से पीड़ा दी जाएगी, और उनकी पीड़ा का धुआं हमेशा हमेशा के लिए उठता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, वह जो कोई उसके नाम का चिन्ह ग्रहण करता है, उनको दिन या रात में विश्राम नहीं मिलता। इसके लिए उन संतों की ओर से धैर्यपूर्ण सहनशीलता की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के प्रति वफादार रहते हैं। तब मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी कि अब से धन्य हैं वे मरे हुए जो प्रभु में मरते हैं। हाँ, आत्मा कहता है, वे अपने परिश्रम से विश्राम लेंगे, क्योंकि उनके काम उनके पीछे हो लेंगे। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरे सामने एक श्वेत बादल है, और उस श्वेत बादल पर मनुष्य के पुत्र सदृश एक व्यक्ति बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसिया है। तब एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर ऊंचे शब्द से जो बादल पर बैठा था उससे कहा, अपना हंसुआ ले और फसल काट, क्योंकि फसल काटने का समय आ गया है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। तब जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ चलाया और पृथ्वी की कटाई हो गई। एक और स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से बाहर आया और उसके पास भी एक तेज दरांती थी। फिर एक और स्वर्गदूत जिसने आग को चार्ज किया था वेदी से आया, और जिसके पास तेज हंसुआ था उसे ऊंची आवाज में बुलाया, अपना हंसुआ ले लो और अंगूर की भूमि से अंगूर के गुच्छे इकट्ठा करो, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। स्वर्गदूत ने अपना दरांती पृथ्वी पर घुमाया, उसके अंगूर इकट्ठे किए और उन्हें परमेश्वर के क्रोध के बड़े रस के कुंड में फेंक दिया। उन्हें शहर के बाहर वाइन प्रेस में रौंदा गया और प्रेस से खून बहकर 1600 स्टेडियम की दूरी तक घोड़े की लगाम जितना ऊंचा हो गया। यह खंड मुझे लगता है ठीक है अध्याय 14 में जो चल रहा है उसका समर्थन करने के लिए शुरू होता है। जैसा कि हमने देखा है, यह मुक्ति और न्याय के बीच वैकल्पिक दृश्यों की एक श्रृंखला है, और यह जो करता है वह मुक्ति और इनाम को चित्रित करता है वफादार जो अध्याय 12 और 13 में सहते रहे। लेकिन अब यह उन लोगों के फैसले को चित्रित करता है जो उसकी छवि में जानवर की पूजा करते हैं, जिन्होंने जानवर का निशान प्राप्त किया और जिन्होंने मूल रूप से उन लोगों को मना कर दिया जिन्होंने समझौता किया और विरोध करने से इनकार कर दिया, और इसके बजाय पूरे में लगे रहे अपने दावों में रोम की विचारधारा। और इसलिए 14 अब मोक्ष और न्याय के दृश्यों को चित्रित करेगा, अध्याय 12 और 13 में लोगों की दो अलग अलग प्रतिक्रियाओं को चित्रित करेगा। इसलिए 14 मेमने की तस्वीर से शुरू होता है, जिसका मतलब है मुझे लगता है जानबूझकर इसके विपरीत होना। अध्याय 13 में जानवर नंबर एक जो मेमने की तरह मारा गया था और अब पुनर्जीवित होता हुआ प्रतीत होता है। यीशु को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो मर गया और मार दिया गया लेकिन अब जीवित है। अब जानवर ने भी मरा हुआ प्रतीत होने का अनुकरण किया और वह वास्तव में मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण मर गया लेकिन अब जीवित प्रतीत होता है। तो पहला जानवर यीशु मसीह की नकल है, लेकिन दूसरे जानवर को भी अध्याय 13 में एक जानवर के रूप में वर्णित किया गया है और श्लोक 11 को एक ऐसे जानवर के रूप में वर्णित किया गया है जिसके मेमने की तरह दो सींग हैं। तो यहाँ मेमने का अर्थ अध्याय 13 के दो जानवरों के सीधे विपरीत है। अब हम जो पाते हैं वह यीशु मसीह और उनके अनुयायी हैं। दूसरे शब्दों में अध्याय 13 में हमने दो जानवरों और उनके अनुयायियों को पाया और फिर जो लोग उनका अनुसरण करने से इनकार करते हैं उन्हें सताया जाता है। लेकिन अब जो लोग अध्याय 13 में अनुसरण करने से इनकार करते हैं, जिन्होंने मेमने का अनुसरण किया है, वे अब सियोन पर विजयी मेमने के साथ खड़े हैं। अध्याय 7 में हमारा परिचय पहले ही 144:000 से हो चुका है। हमने कहा कि वहां वे एक शक्तिशाली सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि एक सेना के रूप में इसराइल की पुराने नियम की छवियों की पूर्ति में चर्च है। अब चर्च जो एक सेना के रूप में था युद्ध करने के लिए बाहर गया, फिर भी उन्होंने अपनी पीड़ा भरी गवाही के माध्यम से ऐसा किया। अब अध्याय 12 और 13 में हम देखते हैं कि जानवर ने युद्ध किया। इसने संतों के साथ युद्ध छेड़ा, लेकिन अब संत अपनी पीड़ा की गवाही के कारण विजयी हुए हैं। अब वे अपने नेता यीशु मसीह के साथ खड़े हैं और सियोन पर्वत पर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। हमने पहले ही नोट किया है कि इस तथ्य पर कि उन्हें कुंवारी कहा जाता है या जिन्होंने खुद को महिलाओं के साथ अशुद्ध नहीं किया है, इस पर शायद दो गुना जोर दिया गया है। नंबर एक, यह संभवतः व्यवस्था विवरण से प्रतिबिंबित होता है। उदाहरण के लिए पुराने नियम में यह शर्त कि युद्ध के समय पुरुष योद्धा यौन संबंधों से दूर रहेंगे, लेकिन यह संभवतः केवल पवित्रता का प्रतीक है कि उन्होंने अध्याय 12 और विशेष रूप से अध्याय 13 में रोम की मूर्ति पूजा प्रथाओं से खुद को अशुद्ध नहीं किया है। इसके बजाय अब वे विजयी हैं क्योंकि उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने स्वयं को अपवित्र करने से इनकार कर दिया, इसलिए यह यौन शुद्धता का शाब्दिक संदर्भ नहीं हो सकता है, हालांकि इसे शामिल किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह मूर्ति पूजा प्रथाओं और अध्याय 13 में रोम की निष्ठा और पूजा का संदर्भ है जिसे लागू किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया और इसके परिणाम भुगते। अब वे विजयी हैं क्योंकि उन्होंने विरोध किया और समझौता करने से इनकार कर दिया। मैं यह भी चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि अध्याय 14 में ये छंद इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये 144:000 शायद अधिक व्यापक रूप से भगवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सिर्फ जातीय इसराइली नहीं हैं। वे केवल परमेश्वर के व्यापक लोगों का एक वर्ग नहीं हैं। लेकिन ध्यान दें कि उनका वर्णन कैसे किया जाता है। उनका वर्णन मनुष्यों के बीच से खरीदे गए के रूप में किया गया है और उन्हें पृथ्वी से छुड़ाए गए के रूप में वर्णित किया गया है। वह भाषा जो प्रकाशित वाक्य 1:5 से निकलती है, जिसमें यीशु ने पृथ्वी से हर जनजाति और भाषा और राष्ट्र के लोगों को छुड़ाकर उन्हें पुजारियों का राज्य बनाने के लिए खरीदा था। इसलिए मैं यह मानता हूं कि 144,000 फिर से उन लोगों के लिए एक छवि है जिन्हें मेमने यीशु मसीह द्वारा छुड़ाया गया है, जिन्हें अब तक उनके लोगों का गठन करने के लिए पूरी पृथ्वी से छुड़ाया गया है और जो मेमने के लोग हैं। तो यह यहूदी और गैर यहूदी से परमेश्वर के अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं। परमेश्वर के सच्चे लोग अब एक सेना के रूप में चित्रित किए गए हैं। 144,000 जो मेमने के साथ विजयी खड़े हैं, जो सियोन पर्वत पर उनके नेता हैं। यह शायद इस दृष्टिकोण से अध्याय 11, 12 और 13 से भी विरोधाभासी है कि हालांकि अध्याय 11 में दो गवाह अंत में सही साबित हो जाते हैं, अध्याय 11 में दोनों गवाहों को हार का सामना करना पड़ता है। अध्याय 12 और 13 में वे इस बात में भी हार का सामना करते हुए दिखाई देते हैं कि ड्रैगन और उसकी दो संतानों जानवर को भगवान के लोगों पर युद्ध छेड़ने की अनुमति दी गई है और वे स्पष्ट रूप से जानवर दो जानवरों के हाथों हार का सामना करते हैं। और ड्रैगन स्वयं। लेकिन अब उन्हें अध्याय 14 में एक शक्तिशाली सेना के रूप में दिखाया गया है जो विजयी है, और अध्याय 12 और 13 में युद्ध की जीत हासिल कर ली है, और अब वे अपने नेता यीशु मसीह के साथ विजयी खड़े हैं। अध्याय 14 का छंद 4 संभवतः प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक में मेरा पसंदीदा छंद है, और मुझे लगता है कि यह रहस्योद्घाटन में सबसे महत्वपूर्ण विषय नहीं तो एक को समाहित करता है, और वह यह है कि 144,000 को उन लोगों के रूप में वर्णित किया गया है जो मेमने का अनुसरण करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। जाता है पुस्तक का मुख्य विषय यह है कि भगवान के लोग वे हैं जो मेमना जहां भी जाता है उसका अनुसरण करते हैं, भले ही इसका मतलब मृत्यु के बिंदु तक उसका अनुसरण करना हो। परमेश्वर के लोग वे हैं जो समझौता करने से इनकार करते हैं, वे इस दुनिया के अनुरूप होने से इनकार करते हैं। इसके बजाय मेमना जहां भी जाता है वे उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ वे जीत के लिए उसका अनुसरण करते हैं, और उन्हें दुनिया से अछूते रहने के रूप में चित्रित किया जाता है। इस कविता पर ध्यान दें, वे जहाँ भी जाते हैं मेमने का अनुसरण करते हैं, उनके वर्णन के ठीक अंत में उन लोगों के रूप में घटित होता है जिन्होंने मूर्ति पूजा प्रथाओं के माध्यम से खुद को अशुद्ध नहीं किया। इसलिए मेमना जहां भी जाता है उसका अनुसरण करने का अर्थ है शुद्ध होकर उसका अनुसरण करना, मूर्ति पूजक दुष्ट दुनिया के साथ समझौता करने से इनकार करना, लेकिन स्पष्ट रूप से रहस्योद्घाटन के व्यापक संदर्भ में पीड़ा और मृत्यु के बावजूद भी ऐसा करना है जैसे यीशु मसीह ने किया। इस खंड में आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए दो और महत्वपूर्ण छवियां माउंट सियोन की छवि पर ध्यान दें। अधिक विस्तार में जाए बिना माउंट सियोन की पृष्ठभूमि भी पुराने नियम की है। माउंट सियोन उस स्थान की एक छवि है जहां भगवान शासन करते हैं, सुरक्षा और सुरक्षा का स्थान है। हम पुराने नियम के भविष्यवाणी पाठ में पाते हैं कि सियोन वह स्थान है जहां ईश्वर अपने लोगों को मुक्ति दिलाएगा, यशाया अध्याय 2 और श्लोक 2, भजन अध्याय 48, सभी पाठ जो परमेश्वर द्वारा अपने लोगों के उद्धार और उनके सियोन पर्वत पर आने का उल्लेख करते हैं। उदाहरण के लिए, और मैं यशाया अध्याय 2 में से एक को किताब की शुरुआत में ही पढ़ूंगा, एक ऐसे दृश्य में जो भगवान और उनके लोगों के अंतिम न्याय, भगवान के अंतिम उद्धार, भगवान के फैसले और की आशा करता है। उसके दुश्मन, लेकिन अब अंतिम मुक्ति जो भगवान अपने लोगों के लिए लाएंगे, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्र भी शामिल होंगे, यशाया यह कहता है। यह वही है जो आमोज के पुत्र यशायाह ने यहूदा और यरूशलेम के संबंध में देखा, अंतिम दिनों में भगवान के मंदिर का पहाड़ पहाड़ों के बीच प्रमुख के रूप में स्थापित किया जाएगा। वह पहाड़ों के बीच खड़ा किया जाएगा और सब जातियां उसकी ओर प्रवाहित होंगी। बहुत से लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। वह हमें अपने मार्ग सिखाएगा ताकि हम उसके मार्गों पर चल सकें। सियोन से व्यवस्था और यरूशलेम से यहोवा का वचन निकलेगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सियोन पूरे यरूशलेम शहर को दर्शाता है, वह स्थान जहां भगवान का सिंहासन है, वह स्थान जहां मंदिर है, वह स्थान जहां भगवान शासन करते हैं, सुरक्षा का स्थान, वह स्थान जहां अब भगवान अपने लोगों के लिए मुक्ति लाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में सियोन की पहचान संभवतः अंतिम समय के नए यरूशलेम से की गई है। इसलिए एक अर्थ में यह दृश्य एक और दृश्य है जो बस आगे की प्रदर्शनी और आगे खोलने और प्रकट करने की तैयारी कर रहा है जो प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में होता है। तो अब परमेश्वर के लोग सियोन में खड़े हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, सुरक्षा का स्थान और उद्धार का स्थान है। यहाँ शब्दावली का अन्य दिलचस्प हिस्सा श्लोक 4 में है, उन्हें पहले फल के रूप में पेश किए जाने के रूप में भी वर्णित किया गया है। अब पहला फल पुराने नियम में है, लेकिन आप इसे नए नियम में भी इसी तरह इस्तेमाल करते हुए पाते हैं। पहला फल वस्तुतः एक कृषि शब्द या फसल का शब्द था जो फसल के पहले भाग को संदर्भित करता था जो आने वाले समय में और अधिक की गारंटी देता था। वास्तव में यह आने वाली हर चीज से अलग नहीं था, यह वास्तव में फसल का ही हिस्सा था। यह पूरी फसल का प्रारंभिक भाग था जो अभी आना बाकी था, और हम इसे नए नियम के प्रयोग में पाते हैं। उदाहरण के लिए पॉल 1 कुरिन्थियों 15 में और अन्यत्र कुलुस्सियों अध्याय 1 में यीशु के पुनरुत्थान को पहले फल के रूप में संदर्भित कर सकता है, अर्थात मसीह का पुनरुत्थान आने वाले अधिक पुनरुत्थानों की पहली किस्त है। अर्थात ऐसा नहीं है कि मसीह का पुनरुत्थान एक चीज है और यह एक प्रकार से और अधिक के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। मसीह का पुनरुत्थान वास्तव में अंत समय के पुनरुत्थान का उद्घाटन है जिसे उसके लोग भी अनुभव करेंगे। लेकिन यीशु का अपना शारीरिक पुनरुत्थान बाकी पुनरुत्थानों का पहला फल है या कि पहली किस्त है जो अभी आना बाकी है। अब यहाँ समझ संभवतः यह होनी चाहिए कि 144,000 एक ऐसा समूह है जो और अधिक आने की आशा करता है। यह निश्चित रूप से पहले फल की कल्पना के अनुरूप होगा। कुछ लोगों ने समझा है कि यहाँ 144,000 एक विशेष समूह है, लेकिन वे एक बड़े समूह का पहला फल हैं जो अभी आना बाकी है। इसमें कठिनाई यह है कि जब आप यहाँ पाठ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ जैसा कि अध्याय 7 में है, जहाँ 144,000 लोगों को सांकेतिक भाषा में रूपांतरित किया गया है, एक असंख्य भीड़ जो सिंहासन के सामने भगवान की उपस्थिति में खड़ी थी और अपनी विरासत का आनंद ले रही थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अध्याय 14 में मेमने के साथ सियोन पर्वत पर खड़ा होना और विजयी होना, विशेष रूप से यदि यह प्रकाशित वाक्य 21 और 22 की आशा करता है, तो आपके पास आने वाले और अधिक का पूर्वानुमानित दृश्य नहीं है। आपके पास अंतिम उद्धार, युद्ध का अंतिम परिणाम और लोगों का अंतिम उद्धार, युद्ध के बाद के युग के अंत में भगवान के लोगों की पूरी संख्या है। तो यहाँ आपके पास इतिहास के अंत में अंतिम लोग हैं, न कि कोई समूह जो और आने का संकेत दे रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुराने नियम में हम पाते हैं कि पहले फलों का उपयोग इसराइल के पूरे राष्ट्र के पहले फल के रूप में किया जाता है, न कि आने वाले और अधिक के संदर्भ में, बल्कि पूरे राष्ट्र को स्वयं एक भेंट के रूप में या पहले फल के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम फसल या पहले फल की इस भाषा को यिर्मयाह अध्याय 2:2-3 में पाते हैं, जहां इसराइल को फसल का पहला कहा जाता है। इसराइल के पूरे राष्ट्र को पहली फसल काटने वाला कहा जाता है। तो यिर्मयाह अध्याय 2 फिर से पुस्तक की शुरुआत में और 2 और 3। आइए देखें यिर्मयाह अध्याय 2:2-3। क्या वे वही हैं जो मैं चाहता हूँ? यहूदा के पोते आमोन के पुत्र योशियाह के राज्य के 16वें वर्ष में यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। किसी कारण से यह वह पाठ नहीं है जो मैं चाहता हूँ। शायद यह 22 है। मैं बाद में इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। यिर्मयाह प्रथम फल भाषा का उपयोग पूरे इसराइल राष्ट्र को संदर्भित करने के लिए करता है, न कि उनके किसी हिस्से को। आप इसराइल के ईजेकील अध्याय 20:40-41 तक इसी तरह की भाषा देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहाड़ पहले फलों से जुड़ा हुआ है। नए नियम में जेम्स अध्याय 1:18 में आप ईश्वर के लोगों को, ईश्वर के संपूर्ण लोगों को पाते हैं, जिन्हें पहले फल के रूप में वर्णित किया गया है, आने वाले लोगों का नहीं बल्कि ईश्वर के संपूर्ण लोगों का। तो प्रकाशित वाक्य 14 में पुराने नियम के साथ पहले फलों के कम से कम कुछ पुराने नियम के उपयोग। यहाँ पहला फल 144,000 को प्रस्तुत करता है, न कि एक समूह के रूप में जो और अधिक आने की उम्मीद कर रहा है, बल्कि यहाँ पहला फल शब्द इतिहास के अंत में भगवान के संपूर्ण अंतिम समय के लोगों को चित्रित कर रहा है, जिसे अब पहले फल के रूप में एक भेंट के रूप में चित्रित किया जा रहा है ईश्वर को। इसलिए अध्याय 13 के विपरीत मैं उस पर वापस लौटना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ इन 144,000 की अवधारणा पहले फल के रूप में भगवान के संपूर्ण अंत समय के लोगों का प्रतीक है, हमें एक और छवि को समझने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण होगी जो बाद में अध्याय 14 में आती है। लेकिन इस बिंदु पर अध्याय 13 के विपरीत, जहां जानवर पूरी दुनिया को धोखा देता है, वह उन्हें अपनी निष्ठा देने के लिए बहकाता है। जानवर को वह निष्ठा देता है जिसकी वह मांग और अपेक्षा करता है, और जहां वह परमेश्वर के लोगों के साथ युद्ध करता है। अब आप भगवान के वफादार लोगों को अध्याय 12 और 13 के अजगर और जानवर के साथ युद्ध में विजयी होकर खड़े हुए पाते हैं। अब वे अपने नेता मेमने के साथ खड़े हैं, और उनके माथे पर भगवान का निशान है, न कि उसका निशान अध्याय 13 से जानवर। और अब वे अशुद्ध और जगत से निष्कलंक खड़े हैं, और सियोन पर्वत पर मेमने के साथ अपनी विजय का उत्सव मनाते हुए गीत गाते हैं। तो दृष्टि का यह पहला भाग स्पष्ट रूप से एक व्याख्या की तरह है, अध्याय 12 और 13 में वर्णित संघर्ष के परिणाम का प्रदर्शन। लेकिन अब अगले भाग में छंद 6-13 प्रदर्शित करते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होता है जानवर का पक्ष लिया। उन लोगों का क्या होता है जिन्हें जानवर की भ्रामक गतिविधि में लाया गया था, जिन्होंने अपने ऊपर जानवर का निशान ले लिया, जो कि पहचान करने, अपनी निष्ठा दिखाने, जानवर के प्रति अपनी पूजा दिखाने का प्रतीक है, शायद उत्पीड़न से बचने के लिए या उससे बचने के लिए अध्याय 13 के अंत में आर्थिक प्रतिबंध। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने जानवर का निशान अपने ऊपर ले लिया, जानवर के साथ पहचान की और उसकी पूजा और निष्ठा की। अध्याय 6-13 विरोध करने वालों, विरोध करने से इनकार करने वालों और समझौता करने वालों की विफलता का वर्णन करते हैं, और यह 3 अलग अलग स्वर्गदूतों के भाषण के आसपास संरचित है। देवदूत नंबर 1 शाश्वत सुसमाचार की घोषणा करने के लिए आता है। अब यह दिलचस्प है कि वह जिस विषय की घोषणा करता है वह ईश्वर से डरने और उसे महिमा देने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि यही भाषा हमने अध्याय 11 और 13 से 14 में देखी, जहां न्याय से बचे कुछ लोगों ने ईश्वर का भय माना और उसे महिमा दी, यह सुझाव देते हुए कि अध्याय 11 में यहां और वहां दोनों जगह आपके पास पश्चाताप का संदर्भ हो सकता है। तो फिर आपके पास यहां जो है वह यह है कि यह स्वर्गदूत पश्चाताप के लिए कहता है, और इसका निहितार्थ उन लोगों के लिए है जो इनकार करते हैं, बजाय उन लोगों के जो जानवर का अनुसरण करना चुनते हैं, अब उन्हें न्याय मिलेगा। इसमें चर्च के वे लोग भी शामिल होंगे जो समझौता कर रहे थे और जिन्होंने रोम और उसकी मूर्ति पूजक ईश्वर विहीन पूजा पद्धति के साथ अपना योगदान देने का फैसला किया था। तो देवदूत नंबर 1 सुसमाचार की घोषणा करता है, और जो लोग इनकार करते हैं वे खुद को पहले देवदूत के भाषण में अंतिम न्याय का सामना करते हुए पाएंगे। वह इसके बगल में है, और शायद हमें इन तीनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। हो सकता है कि अगले 2 अधिक स्पष्ट रूप से वर्णन करें कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है जो देवदूत नंबर 1 के संदेश को अस्वीकार करते हैं। जो लोग परमेश्वर से डरने और महिमा देने से इनकार करते हैं उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा, और अब यहाँ बिल्कुल वैसा ही है जैसा वे छंद 8 में सामना करते हैं और अगले 2 स्वर्गदूतों के रूप में अनुसरण करते हैं। एंजल नंबर 2 बेबीलोन पर निर्णय की घोषणा करता है। इसकी पृष्ठभूमि संभवतः पुराने नियम दानियल अध्याय 4 और श्लोक 30 और अन्य पुराने नियम ग्रंथों में हैं जो स्वयं बेबीलोन के फैसले को चित्रित करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ 14:8 में पहली प्रत्याशा है, एक गिरा हुआ महान बेबीलोन है जो सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार की उन्मादी शराब पिलाता है। यहाँ हम किसी चीज की पहली प्रत्याशा देखते हैं जो अध्याय 17 और 18 में अधिक विस्तार से विकसित होगी, जहाँ हमें बेबीलोन का वर्णन मिलता है और फिर उसके पतन और उसके न्याय और विनाश का विस्तृत विवरण मिलता है। संभवतः यहाँ हम बेबीलोन को रोम के कोड के रूप में लेंगे, यानी बेबीलोन पुराने नियम की ओर वापस जा रहा है। बेबीलोन लगभग बनता जा रहा है। हम इसके बारे में 8:17 और 18 में अधिक बात करेंगे, लेकिन बेबीलोन लगभग एक ईश्वर विरोधी, अहंकारी, मूर्ति पूजक, अत्याचारी, उत्पीड़क राष्ट्र या साम्राज्य की छवि या प्रतीक बनता जा रहा है। बेबीलोन लगभग उसका एक प्रतीक बन जाता है। अब यह लेबल उचित रूप से रोमन साम्राज्य पर लागू होता है, जो एक और ईश्वर विहीन, अहंकारी, हिंसक, दमनकारी और मूर्ति पूजक साम्राज्य है। बेबीलोन एक उपयुक्त पदनाम है ताकि आपके पास प्राचीन बेबीलोन में सन्निहित वही विशेषताएं हों जो अब सतह पर हैं और फिर से उभर रही हैं और पहली शताब्दी के रोमन साम्राज्य में रोम के पहली शताब्दी के शहर में सन्निहित हैं जिसे जॉन संबोधित कर रहे हैं। हम इसे उसी क्षण अध्याय 16 और श्लोक 19 में कुछ अध्याय बाद में दोहराते हुए पाएंगे और फिर जैसा कि हमने कहा इसे अध्याय 17 और 18 में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। तो यहाँ विचार यह है कि यदि बेबीलोन को गिरना है तो जो लोग उसके हैं और उसके साथ समझौता करते हैं वे भी गिरेंगे। तो यह सिर्फ एक भौतिक शहर का इतना विनाश नहीं है, बल्कि जो लोग उससे संबंधित हैं उन्हें भी वही भाग्य भुगतना पड़ेगा यदि वे ईश्वर से नहीं डरते और पश्चाताप नहीं करते हैं। देवदूत अध्याय 1 का संदेश, यदि वे विरोध करने से इनकार करते हैं और यदि वे समझौता करते हैं तो वे बाबुल के भाग्य को भुगतना होगा जो अब स्वर्गदूत न्याय में गिरावट के बारे में सुनाता है। तीसरा देवदूत भी एक संदेश की घोषणा करता है और यह संदेश स्पष्ट रूप से जानवर के प्रति निष्ठा के परिणामों को इंगित करता है, जैसा कि अध्याय 13 में देखा गया है। और इसलिए यहाँ अध्याय 13 के लोगों पर निर्णय की घोषणा की गई है। श्लोक 10 में उन लोगों पर ध्यान दें जिन्होंने उसकी छवि की पूजा की, जिन्होंने श्लोक 9 में प्राप्त किया, जिन्होंने माथे पर या अपने हाथ पर निशान प्राप्त किया, वे दो विवरण सीधे अध्याय 13 पर जाते हैं। इसलिए अध्याय 13 में जिन लोगों ने जानवर का निशान प्राप्त किया उन्होंने उस छवि की पूजा की और मूर्ति पूजक ईश्वर विहीन रोम के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, अब यह न्याय होगा जो उस पर पड़ेगा। और जो हम इस विवरण में पाते हैं वह वास्तव में वह भाषा है जो अंतिम निर्णय की आशा करती है जो अध्याय 18-20 में मिलेगी। तो पहले से ही यह एक प्रकार की तेजी से आगे बढ़ने वाली झलक है, अंतिम निर्णय की प्रत्याशा जो अधिक पूर्ण रूप से प्राप्त होगी बाद के अध्यायों में विकसित किया गया है, हालांकि उस भाषा का अधिकांश हिस्सा पहले से ही यहाँ उन लोगों के भाग्य का वर्णन करने के लिए मौजूद है जिन्होंने बेबीलोन रोम के साथ अपना भाग्य छोड़ दिया है, जिन्होंने जानवर के प्रति, मूर्ति पूजक, ईश्वर विहीन, दमनकारी साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और पूजा की है। और जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस पर ध्यान दें। सबसे पहले इसे भगवान के क्रोध का प्याला पीने के रूप में वर्णित किया गया है। पुराने नियम में शराब के प्याले के रूप में भगवान का क्रोध भगवान के फैसले के लिए एक सामान्य रूपक था, जैसे कि उस शराब को इस तरह से मिलाना जो पानी के साथ बिना पतला था बल्कि पूरी ताकत का था। इसलिए तब परमेश्वर का क्रोध पूरी शक्ति से भड़केगा। यिर्मयाह अध्याय 25 में, जो पुराने नियम के अन्य ग्रंथों के बीच इस भाषा के लिए पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। यिर्मयाह अध्याय 5 और श्लोक 15 से 18 तक हम यह पढ़ते हैं, इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यों कहा, मेरे क्रोध की मदिरा से भरा हुआ यह प्याला मेरे हाथ से ले ले और उन सब जातियों को जिनके पास मैं भेजता हूँ नष्ट कर दे। तुम इसे पी लो, जब वे उसे पिएंगे तब उस तलवार के कारण जो मैं तुम्हारे बीच भेजूंगा लड़खड़ाकर पागल हो जाएंगे। तब मैंने यहोवा के हाथ से कटोरा ले लिया और उन सब जातियों को जिनके पास उसने मुझे भेजाया यरूशलेम और यहूदा के नगरों और उसके राजाओं और हाकिमों को पिलाया और उनको खंडहर और भय और तिरस्कार का पात्र बना दिया, कोस रहे हैं जैसे वे आज हैं। फिरौन मिस्र का राजा, उसके सेवक आदि आदि। तो यिर्मयाह अध्याय 25 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो बिना मिश्रित शराब के एक कप, पूरी ताकत की शराब, बिना मिलाई गई शराब, भगवान के संकेत की धारणा के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। क्रोध और राष्ट्रों को उसे पिलाकर मतवाला बनाना, फिर दुष्ट मानवता पर अपना न्याय बरसाने वाले परमेश्वर का प्रतीक बन गया। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रों को ईश्वर के क्रोध के नशे में धुत दिखाया गया है। बाद में हम देखेंगे और वास्तव में हम इसे श्लोक 8 में फिर से देखेंगे ताकि यह दिखाया जा सके कि ये संदेश जुड़े हुए हैं। श्लोक 8 में बेबीलोन गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसने सब जातियों को अपने व्यभिचार की मदिरा पिलाई है। इसलिए सभी राष्ट्र अनैतिकता, मूर्ति पूजा, अत्याचारी राष्ट्र और रोमन साम्राज्य की बुराई और दुष्टता के कारण मतवाले हो गए हैं। इसलिए यह नष्ट हो जाएगा, इसने राष्ट्रों को उसका रस पिलाया है। राष्ट्र रोम के शासन के नशे में चूर हो गए हैं। अब लेखक इस धारणा का आह्वान करता प्रतीत होता है कि अपराध के अनुरूप ही सजा दी जाएगी, अर्थात बाबुल रोम ने जाति जाति को अपनी मदिरा से मतवाला कर दिया है। अब परमेश्वर उन्हें अपनी मदिरा से, जो परमेश्वर के क्रोध की मदिरा है, मतवाला कर देगा। तो सजा अपराध के अनुरूप होगी, न केवल बेबीलोन बल्कि वे सभी जो बेबीलोन से जुड़े हैं, वे सभी जो बेबीलोन रोम की मूर्ति पूजक दुष्ट प्रथाओं में भाग लेते हैं, अब परमेश्वर के क्रोध उसके क्रोध की मदिरा से मतवाले हो जाएंगे। दूसरी बात शाश्वत न्याय की भाषा पर ध्यान देना है, जहां आपके पास धुएं और गंधक की यह भाषा हमेशा हमेशा के लिए ऊपर जाती रहती है। संभवतः धुएं और गंधक की यह भाषा एक और छवि या प्रतीकवाद है, जो पुराने नियम और सर्वनाशी भाषा से भी निकलती है। यह बस लोगों पर आने वाले दैवीय न्याय से तीव्र और गंभीर पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है और धुने को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठते हुए बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जब आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 या अध्याय 18 पर पहुंचते हैं तो बेबीलोन के विनाश को हमेशा हमेशा के लिए उठते धुएं के रूप में वर्णित किया गया है। तो पहले से ही यह पाठ आपको निर्णय की एक पूरी तस्वीर की झलक दे रहा है, न कि किसी अलग या भिन्न निर्णय की। यह वही निर्णय है, लेकिन बाद के अध्यायों में इसे और अधिक पूर्ण रूप से और अधिक विस्तार से विकसित किया जाएगा। यह भाषा फिर से प्रतिबिंबित होती प्रतीत होती है, उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 34। यदि आप यशाया अध्याय 34 और श्लोक 9 और 10 पर वापस जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अध्याय 34 और श्लोक 9 और 10 में निर्णय के संदर्भ में समान भाषा मिलेगी। यहोवा के पास पलटा लेने का दिन है और सियोन का मुकदमा चलाने के लिए प्रतिशोध का वर्ष है। दिलचस्प बात यह है कि 14 की शुरुआत में उल्लिखित सियोन के संबंध में सियोन नाम पर ध्यान दें। ईडन धाराएं पिच में बदल जाएंगी, उसकी धूल जलती हुई गंधक में बदल जाएगी, उसकी भूमि धधकती हुई या आग की ज्वाला बन जाएगी। वह दिन और रात में भेद न करेगा, उसका धुआं सदा उठता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वह उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई भी फिर कभी इससे होकर नहीं गुजरेगा। इसलिए निर्णय के संदर्भ में अग्नि और गंधक की भाषा पर ध्यान दें। परमेश्वर के न्याय के संकेत के रूप में धुएं की भाषा को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठते हुए देखें, जिसे जॉन यहाँ चित्रित करता प्रतीत होता है। लेकिन फिर दिलचस्प बात यह है कि यशायाह 34 में सियोन की सुरक्षा के संदर्भ में, जिसे आप अध्याय 14 की शुरुआत में भी पाते हैं, तो जॉन चित्र बना रहा है वह बस दूसरे दुष्ट, बुरे, दमनकारी, मूर्ति पूजक साम्राज्य और उससे संबंधित लोगों पर भगवान के फैसले का वर्णन करने के लिए पुराने नियम के फैसले के दृश्यों से भाषा इकट्ठा कर रहा है। तो एक बार फिर हमें इस भाषा को शाब्दिक रूप से कुछ शाब्दिक शारीरिक पीड़ा का वर्णन करने के रूप में नहीं लेना चाहिए जो लोग धुएं में सांस लेने या सल्फर के कारण पीड़ित होते हैं। और निश्चित रूप से हमें इसे किसी अंतिम समय के परमाणु युद्ध या उस जैसी किसी चीज के संदर्भ के रूप में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जॉन भगवान के न्याय के अर्थ और निश्चितता को उसी तरह चित्रित करने के लिए पुराने नियम से स्टॉक प्रतीकात्मकता का उपयोग कर रहा है, जैसे उसने अतीत में दुष्ट साम्राज्यों का न्याय किया था। इसलिए पहली शताब्दी में परमेश्वर के लोग निश्चित हो सकते हैं कि वह रोम के साथ साथ किसी भी अन्य दुष्ट साम्राज्य का न्याय करेगा जो वही भूमिका निभाएगा। तो इन तीन खंडों में, इन तीनों खंडों की संपूर्णता में देवदूतीय उद्घोषणा संभवतः एक साथ चलने के लिए है। यह पश्चाताप ईश्वर से डरने और उसे महिमा देने का आह्वान है। ऐसा करने से इनकार करने पर वे बेबीलोन के भाग्य में शामिल हो जाएंगे, जिसका पतन होना है, और साथ ही वे पुराने नियम की कल्पना का उपयोग करके शाश्वत धुएं या जलते हुए सल्फर के संदर्भ में, लेकिन नशे में होने की कल्पना का उपयोग करके भगवान के क्रोध का पात्र भी बन जाएंगे। शराब के साथ बिना घुली शराब से भरे कटोरे का प्रतीक या कल्पना भगवान के क्रोध का प्रतीक है। तो ये छंद अध्याय 14, छंद 1 से 5 के विपरीत हैं। अब यह संकेत मिलता है कि भगवान के लोगों के साथ क्या होता है जो अध्याय 12 और 13 में शैतान और जानवर के साथ अपने संघर्ष में ईमानदारी से सहन करते हैं और विरोध करते हैं। अब इन तीन स्वर्गदूतों का संदेश इंगित करता है कि रोम और जानवर और उनके साथ मिलीभगत करने वालों का क्या होता है जो धोखा खा जाते हैं और पूजा और निष्ठा करते हैं और जानवर का निशान अपने ऊपर ले लेते हैं और अध्याय में जानवर और उसकी छवि की पूजा करते हैं। 13 इस अध्याय के श्लोक 12 और 13 अध्याय 14 यह प्रदर्शित करने के लिए हैं कि यह निर्णय श्लोक 12 संतों की ओर से धैर्यपूर्ण सहनशीलता की मांग करता है। दूसरे शब्दों में यह निर्णय परमेश्वर के लोगों को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करने के लिए है। यह विश्वास कि भगवान वास्तव में वापस आएंगे और अपने लोगों का न्याय करेंगे और उन्हें सही ठहराएंगे, भगवान के लोगों को दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा यह उनके लिए भी एक चेतावनी होनी चाहिए, उनके लिए जो समझौता करना चाहते हैं, उनके लिए जो रोमन शासन के संदर्भ में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, उनके लिए जो समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि जानवर की पूजा करना, रोम की पूजा करना और रहना ठीक है। इसके मूर्ति पूजा प्रथाओं में शामिल हैं, शायद उत्पीड़न से बचने के लिए या कुछ और, तो ये ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि यदि वे दृढ़ रहने में विफल रहते हैं तो वे खुद को इन तीन स्वर्गदूतों के संदेश में वर्णित निर्णय के प्राप्तकर्ता के रूप में पाएंगे। इसलिए इसका उद्देश्य ईसाइयों को दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करना है, यदि भगवान उस निर्णय और स्थिति की गंभीरता के कारण आकर न्याय करने वाले हैं। जो लोग समझौता करने के लिए प्रलोभित हैं, उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि समझौता करने से इनकार करना या विरोध करने से इनकार करना उन्हें इन निर्णयों के प्राप्तकर्ता के रूप में शामिल करेगा। लेकिन जिन लोगों को सताया जा रहा है उन्हें अब जारी रखने की प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही आत्माओं ने वेदी की ओर पुकारा, हे भगवान, कब तक आप हमारे खून का बदला लेंगे? अब हम तीन स्वर्गदूतों के संदेशों में देखते हैं कि भगवान अपने संतों के खून का बदला ले रहे हैं, भगवान अपने संतों की वफादार गवाही और पीड़ा और मृत्यु का बदला ले रहे हैं। अध्याय 14 में अगला खंड दिलचस्प है, जिसकी शुरुआत मैंने देखा या मैंने एक अन्य खंड को चिह्नित करते हुए देखा। जिस तरह से हमें इस खंड और अध्याय 14 के बाकी हिस्से के साथ व्यवहार करना चाहिए, उस पर प्रारंभिक टिप्पणी करने के लिए यह है कि ये अध्याय 14 श्लोक 1 से 13 के बाद होने वाली घटनाओं का चित्रण नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हम इन घटनाओं को अध्याय 14 छंद 14 से अंत तक देखेंगे। ये दो आगे के दृश्य अनाज की फसल के रूप में यह दृश्य और अंगूर की फसल के रूप में दृश्य, ये आगे होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं अध्याय के पहले भाग में। तो ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। यह छवियों का एक और सेट है। अध्याय 14 के पहले भाग में जो कुछ हुआ है उसे चित्रित करने या वर्णन करने का एक और तरीका है, और हमने यह सब रहस्योद्घाटन के माध्यम से देखा है। जॉन मुख्य रूप से हमें अंत तक पहुंचने वाली घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम नहीं देता है। वह अपने पाठकों के वर्तमान और भविष्य का वर्णन करता है, लेकिन वह विभिन्न छवियों और विभिन्न भाषा का उपयोग करके इसका अर्थ तलाशता है, जिनमें से अधिकांश पुराने नियम से ली गई हैं। अब जॉन पुराने नियम से भाषा लेने जा रहा है, और मुझे लगता है कि यीशु की शिक्षाओं से भी सर्वनाश साहित्य के रूप में भगवान के न्याय की प्रकृति का वर्णन करने के लिए भाषा तैयार की जाएगी, जिसे उसने पहले ही अध्याय 14 छंदों में विभिन्न भाषाओं में वर्णित किया है 1 से 13। अब इन दो दृश्यों के बारे में प्रश्न, जैसा कि हमने कहा, ये दोनों दृश्य स्पष्ट रूप से निर्णय दृश्य हैं, हालांकि वे भिन्न हैं। पहला दृश्य अनाज की कटाई का दृश्य है, जहां आपके पास हंसिया लिए हुए मनुष्य के पुत्र की तस्वीर है और वह बाहर जाता है और पृथ्वी की कटाई करता है। दूसरा दृश्य एक देवदूत का दृश्य है, जिसके पास एक दरांती भी है, लेकिन यह देवदूत हंसिया घुमाता है और अंगूर की फसल इकट्ठा करता है, अंगूर की बेलें इकट्ठा करता है, जहां वह उन्हें शराब बनाने के लिए रौंदेगा। मूल रूप से इसके पीछे का शाब्दिक चित्रण है यह। तो आपके पास दो दृश्य हैं, एक अनाज की फसल और एक अंगूर की फसल। इसके संबंध में प्रश्न यह है कि ये दोनों दृश्य विशेष रूप से क्या दर्शा रहे हैं और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, और वे अध्याय 14 श्लोक 1 से 13 तक कैसे संबंधित हैं। जब तक हम यह नहीं कहना चाहते कि यह केवल छवियों का एक अंधाधुंध संग्रह है, क्या हम यह सुझाव देने में सक्षम हो सकते हैं कि वे अध्याय 14 के पहले 13 छंदों से कैसे संबंधित हैं? और फिर से जोर देने के लिए, इन्हें अध्याय 14 1 से 13 की घटनाओं के बाद कालानुक्रमिक रूप से घटित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये अब अनाज और अंगूर की फसल की भाषा का उपयोग करके उन घटनाओं को चित्रित करने के और तरीके हैं। तो जॉन दो दृश्यों में क्या देखता है? मैं जो करना चाहता हूं वह उनमें से प्रत्येक को लेना है और उनकी पृष्ठभूमि और क्या हो रहा है इसका वर्णन करने का प्रयास करना है, और फिर एक दूसरे के संबंध का प्रश्न उठाना है, जो मुझे लगता है कि जब हम उनका वर्णन करना शुरू करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। पहला दृश्य श्लोक 14 से 17 में पाया जाता है, और वह अनाज की कटाई का दृश्य है, और इसकी शुरुआत दानियेल अध्याय 7 को श्लोक 13 में याद करने से होती है। इसकी शुरुआत मनुष्य के पुत्र के बादल पर बैठने से होती है, और वैसे जॉन यहां लगता है शायद जानबूझकर ऐसा, लेकिन निश्चित रूप से मसीह के बादल पर आने के अन्य नए नियम के चित्रणों के अनुरूप है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और श्लोक 13 और उसके बाद मैथ्यू 24 और अन्य जगहों पर यीशु की अपनी शिक्षा, लेकिन सभी शायद दानियेल अध्याय 7 और मनुष्य के पुत्र के बादलों पर बैठे या आने की भाषा पर वापस जा रहे हैं। दानियेल 7 एक सफेद बादल पर बैठे मनुष्य के पुत्र की भाषा की पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जिसे जॉन देखता है, और दिलचस्प बात यह है कि अध्याय एक के दर्शन के विपरीत, जहां जॉन डैनियल अध्याय सात से ली गई भाषा में मनुष्य के पुत्र को देखता है, फिर से प्रकाशित वाक्य एक के विपरीत प्रसिद्ध मनुष्य के पुत्र का दर्शन, जहां जॉन मनुष्य के पुत्र को देखता है, परंतु अब यूहन्ना मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखता है, परंतु उसके मुंह से तलवार निकलती है, परंतु अब उसके हाथ में एक चोखा हंसिया है। दरांती संभवतः निर्णय के विषय का सुझाव देती है, और इसलिए हमारे पास मनुष्य के पुत्र की यह तस्वीर है जो अब न्याय करने आ रहा है। लेकिन यह दिलचस्प है कि मनुष्य का पुत्र, यदि इसे मसीह के साथ पहचाना जाना है, जो मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से अध्याय एक और अन्यत्र के प्रकाश में है, यदि यह मनुष्य का पुत्र है, यह दिलचस्प है कि एक स्वर्गदूत आता है और उसे हंसिया घुमाने और पृथ्वी की कटाई करने का आदेश देता है। इसी कारण से मैंने सुझाव दिया है कि यहाँ मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह नहीं है या कोई अन्य देवदूत प्राणी होना चाहिए। आप एक और स्वर्गदूत को मनुष्य के पुत्र यीशु पर अधिकार कैसे दे सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि क्या करना है? लेकिन मुझे लगता है कि कुंजी यह जानना है कि देवदूत कहाँ से आता है। देवदूत मंदिर से आता है, जो भगवान का निवास स्थान है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ तस्वीर सिर्फ यह नहीं है कि स्वर्गदूत के पास मनुष्य के पुत्र को यह बताने का अधिकार है कि उसे क्या करना है, बल्कि देवदूत मंदिर से एक संदेश ला रहा है, या देवदूत भगवान से एक संदेश ला रहा है, अब बता रहा है, मनुष्य के पुत्र, फसल काटने का समय आ गया है। फसल पक गई है और फसल काटने का समय आ गया है। पुराने नियम की दो संभावित पृष्ठभूमियां हैं। सबसे पहले मैथ्यू अध्याय 13 और श्लोक 24 से 30 में हम यीशु को अंतिम न्याय और इतिहास के अंत में होने वाली फसल को चित्रित करने के लिए अनाज की फसल की छवि का उपयोग करते हुए देखते हैं, जहां जंगली घास जला दी जाती है। संसार को खरपतवार और गेहूं के एक साथ उगने वाले खेत के रूप में देखा जाता है। जंगली घास को बाहर निकाला जाता है, उन्हें जलाया जाता है, अनाज जंगली घास को बाहर निकाला जाता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए भंडार कक्ष में रखा जाता है, क्योंकि यह अच्छा है। यह वह सकारात्मक फसल है जिसे यीशु ने मैथ्यू अध्याय 13 में काटा हुआ देखा है। बाद में यूहन्ना अध्याय चार और श्लोक 34 से 38 में यीशु एक पकी फसल का उल्लेख करते हैं और अपने शिष्यों से अनंत जीवन के लिए फसल काटने का आह्वान करते हैं। यह एक उदाहरण या एक स्थान हो सकता है जहां जॉन यीशु की शिक्षाओं और अनाज की फसल की छवि के संपर्क में प्रतीत होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यदि जॉन यीशु की शिक्षाओं पर काम कर रहा है, तो यह दिलचस्प है कि नंबर एक में पहले उदाहरण में मैथ्यू 13 में जंगली घास को जला दिया जाता है और नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन अनाज को संरक्षित किया जाता है, और यूहन्ना 4 में फसल के पकने की भाषा, जैसे कि आप काटने के समय पर हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 14 के श्लोक 15 में पृथ्वी की फसल यहाँ है। यूहन्ना अध्याय 4 में जहाँ हम फसल को पकते हुए पाते हैं, फसल उनसे कहा गया है कि वे अनंत जीवन के लिए फसल काटें। अब इसमें जोड़े कि मुझे लगता है कि अनाज की कटाई का यह दृश्य 144:000 की छवि को पहले फल के रूप में उठाता है, अनाज की फसल की भाषा, भगवान के लिए पहला फल। तो मुझे लगता है कि यहाँ यही चल रहा है, श्लोक 14 से 16 एक सकारात्मक फसल है। यह अविश्वासियों के निर्णय में से एक नहीं है, यह दुष्टों का न्याय नहीं है, यह एक सकारात्मक फसल है। नंबर दो बेबीलोन पर निर्णय की घोषणा करता है। इसकी पृष्ठभूमि संभवतः पुराने नियम डैनियल अध्याय 4 और श्लोक 30 और अन्य पुराने नियम ग्रंथों में है, जो स्वयं बेबीलोन के फैसले को चित्रित करते हैं। यह पहले फलों की फसल है, 144,000 जो परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है। अब पृथ्वी पर फसल पक चुकी है, वह परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए अब मनुष्य का पुत्र फसल काटने अर्थात लोगों को उनके अनंत प्रतिफल के लिए अर्थात परमेश्वर के लिए पहला फल बनने के लिए फसल काटने आता है। तो मेरी राय में छंद 14 से 16 अध्याय 14 के अनुरूप हैं, 1 से 5 तक 144,000 भगवान के लिए पहला फल जो विजयी होते हैं क्योंकि उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया है। अब दूसरी छवि दृश्य संख्या 2 अंगूर की फसल है। और यहाँ आपके पास एक और देवदूत है जो फसल में शामिल होने के लिए आ रहा है। और मेरा मानना है कि यह अविश्वासियों की फसल की भाषा है। दूसरे शब्दों में श्लोक 17 से लेकर अध्याय के अंत तक श्लोक 8 से 13 के अनुरूप हैं। मुझे खेद है, 12 और 13 भगवान के लोगों को दृढ़ रहने और विरोध करने का आदेश है, लेकिन श्लोक 11 के माध्यम से इसलिए 8 से 11 तक स्वर्गदूतों का संदेश जो अविश्वासी बाबुल और अविश्वासी दुनिया पर निर्णय दे रहे हैं, अब यह उससे मेल खाता है। तो इसे एक साथ रखने के लिए 14 से 16 में अनाज की फसल अध्याय 14 के पहले भाग से मेल खाती है, भगवान के पहले फल के रूप में 144,000 की छवि। अब उन्हें अंतिम समय के न्याय के समय कटी हुई फसल के रूप में चित्रित किया जा रहा है। और अब अध्याय के अंत में 17 से श्लोक 20 तक 8 से 11 के अनुरूप होगा। यह अविश्वासियों का निर्णय है। अब 8 से लेकर उसके बाद के 8 में अविश्वासियों के फैसले को 14 से 20 के इस दूसरे फैसले के दृश्य में अंगूर की फसल के रूप में दर्शाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे आगे यह संकेत मिल सकता है कि यह पहले खंड में दिलचस्प है, यह मनुष्य का पुत्र है जो फसल काटने आता है। अब यह एक और देवदूत है जो फसल काटने के लिए आता है। और इसी प्रकार एक स्वर्गदूत ने मनुष्य के पुत्र को अपनी फसल काटने के लिए बुलाया। अब एक और स्वर्गदूत पहले स्वर्गदूत को बुलाता है जो हंसिया लेकर आता है। उसके पास एक दरांती भी है। एक और देवदूत वेदी से मंदिर से बाहर आता है और उसे अब अपनी दरांती घुमाने के लिए भी बुलाता है। और इस बार यह अंगूर की फसल के लिए होगा। संभवतः यह तथ्य भी कि देवदूत वेदी से आता है यह सुझाव दे सकता है कि अध्याय 8 की तरह 1 से 5 तक जहां संत मिश्रित होते हैं, संतों की यह प्रार्थना वेदी की धूप के साथ मिश्रित होती है। इसे हमें संतों की प्रार्थना का उत्तर समझना चाहिए। यह उन शहीदों का प्रतिशोध है जो कब तक चिल्लाते रहते हैं, हे भगवान। परंतु अब कटनी हो रही है और स्वर्गदूत अंगूरों समेत बेलें बटोरता है क्योंकि अब वे दाख के कुंड में रौंदी जाएंगी। और यहाँ छवि शायद यह है कि आपके पास अंगूरों से भरा एक बर्तन होगा और अंगूरों को सचमुच रौंद दिया जाएगा ताकि उनमें से रस निचोड़ लिया जाए। रस दूसरे बर्तन में बह जाता है जिसका उपयोग वाइन के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए इस कल्पना की पृष्ठभूमि संभवतः जोएल अध्याय 3 और श्लोक 13 है। इसके अलावा अन्यत्र हम अंगूर की फसल को भगवान के अंतिम समय के फैसले के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 62 में, यशायाह अध्याय 62 और श्लोक 2 और 3 में हम अंगूर को रौंदने की भाषा या अंगूर की भाषा को फसल के प्रतीक के रूप में पाते हैं। अध्याय 62 और छंद के पहले जोड़े सियोन की खातिर मैं चुप नहीं रहूंगा, यरूशलेम की खातिर मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक उसकी धार्मिकता भोर की तरह चमक न जाए, उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह न चमक जाए। सियोन के साथ उस दिलचस्प संबंध पर फिर से ध्यान दें जो आपको अध्याय 14 की शुरुआत में मिला था। राष्ट्र आपकी धार्मिकता और सभी राजा आपकी महिमा देखेंगे। और तुम्हें एक नए नाम से बुलाया जाएगा जो प्रभु का मुख प्रदान करेगा। तू यहोवा के हाथ में शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर के हाथ में राजमुकुट ठहरेगा। श्लोक 6, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठा दिए हैं, वे दिन या रात कभी चुप न रहेंगे। तुम प्रभु को पुकारोगे और अपने आप को विश्राम नहीं दोगे। किसी कारण से मुझे फिर से गलत अध्याय मिल गया है। मुझे वास्तव में यह पता लगाना होगा कि वह क्या है। विलाप गीत 1 श्लोक 15 दूसरा है, जो कुचले हुए अंगूरों की छवि को अंत समय की फसल की छवि के रूप में उपयोग करता है। तो तस्वीर सियोन शहर के बाहर की है, और यह दिलचस्प है कि भविष्यवक्ताओं में आप पाते हैं, और यहाँ आप पाते हैं शहर के बाहर की भाषा, शहर के बाहर होने वाला न्याय, जो संभवतः वापस संदर्भित करता है अध्याय 14 की शुरुआत में सियोन के लिए। तो अब आप न्याय को पुराने नियम के शब्दों में चित्रित करते हुए पाते हैं, जो जोएल से लिया गया है, यशायाह से लिया गया है, विलाप जैसी पुस्तक से लिया गया है, और कहीं और भगवान के अंतिम न्याय को चित्रित किया जा रहा है, जैसे कि भगवान एक शराब के कुंड को रौंद रहे हैं, अंगूर को रौंद रहे हैं एक वाइन प्रेस में। लेकिन फैसले के दृश्य में दिलचस्प बात यह है कि शराब से जो रस निकलता है वह खून बन जाता है, अर्थात यह अंतिम निर्णय और अंतिम लड़ाई के पीड़ितों का खून बन जाता है। अगले खंड में मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। इस खंड के समापन में मैं उस छवि को देखना चाहता हूँ जिसमें लेखक ने घोड़े की लगाम तक खून का उपयोग किया है और 600 स्टेडियमों वाले खंड की लंबाई तक फैला हुआ है। मैं इस पर थोड़ा गौर करना चाहता हूँ कि जॉन को वह छवि कहाँ से मिलती है और यह भी कि वह छवि क्या दर्शाती है। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह प्रकाशित वाक्य 14, संतों का उद्धार और दुष्टों पर न्याय पर 17:20 है।